लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूएन महासभा के अगले सत्र में वे वर्तमान अध्यक्ष बोलकान बोजगीर का स्थान लेंगे। बोलकान बोजगीर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को महासभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष लघु द्वीपीय देशों के लिए एक मजबूत आवाज रहे हैं। महासंयुक्त महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष को बधाई दी। यूएन प्रमुख ने कहा, अब्दुल्ला शाहिद को लंबा कूटनैतिक अनुभव है और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद की अहमियत के प्रति गहरी समझ है। यूएन महासचिव ने महासभा के 75वें सत्र के दौरान असाधारण नेतृत्व के लिए वर्तमान अध्यक्ष वोल्कान बोजगीर की सराहना की। यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि महासभा के 76वें सत्र को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 3 अहम कार्य स्तंभों पर वैश्विक महामारी के असर से निपटना होगा: टिकाऊ विकास, शांति और मानवाधिकार। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि साझा लक्ष्यों और सार्वभौमिक मूल्यों को बरकरार रखने के कार्य में यूएन सचिवालय का पूर्ण समर्थन उनके साथ है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के यूएन दशक की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि दुनिया जैव विविधता की क्षति, जलवायु व्यवधान और बढ़ता प्रदूषण 3 पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है, जिसके मद्देनजर यह प्रकृति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई करने का समय है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि बहुत लंबे समय से मानवता ने धरती के जंगलों को काटा है और अपनी नदियों और महासागरों को दूषित किया है। ऐसा करते हुए मानवता ने अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक भोजन, जल एवं संसाधनों से खुद को वंचित करने का खतरा मोल ले लिया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के अनुसार जलवायु त्रासदी से बचने, प्रदूषण की चुनौती से निपटने और जीव जंतुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकने के लिए अगले 10 वर्षों का समय ही बचा है।
That is why on this World Environment Day we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration.
यूएन प्रमुख कह रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के दशक की शुरुआत के जरिए सरकारों, व्यवसायों, प्रबुद्ध समाज और नागरिकों को एकजुट कर धरती के घाव भरने के अभूतपूर्व प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाल कर एक ऐसा परिवर्तन लाया जा सकता है जिससे समस्त टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी। यूएन प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक को वैश्विक कार्रवाई का आह्वान बताया है, जिससे न सिर्फ पृथ्वी के संसाधनों को संरक्षण मिलेगा बल्कि 2030 तक लाखों नए रोजगार पैदा होंगे और गरीबी और भुखमरी मिटाने में मदद मिलेगी।
पिछले 2 महीने में कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारत में संकट की स्थिति पैदा कर दी है। भारत में अब तक यानी 11 जून सुबह तक कोविड-19 के 2,92,74,823 मामले दर्ज किए गए और 3,63,097 लोगों की मौत हुई है। बचाव और रोकथाम उपायों से लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा हो गई है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली के यूएन न्यूज हिंदी के अंशु शर्मा ने भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्टर विशोय पाराजुली से बातें की।
कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालांकि फिलहाल सबका ध्यान स्वास्थ्य संबंधी प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, लेकिन सतह के नीचे एक और समस्या पनप रही है, खाद्य असुरक्षा और भुखमरी की। भारत में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में इस महामारी का क्या प्रभाव होगा?
जो ये सेकेंड वेव आया, ये बहुत हार्ड था। शहरी एरिया में भी गरीबी बढ़ गया है, गांव में भी और बढ़ गया है। करीबन 100 मिलियन आदमी ने आदमी के पास काम नहीं है, तो इसी हिसाब से उनका इनकम भी नहीं है। तो ये भी है कि पहले बार जो वेव आया था तो इकोनॉमी को बहुत खराब किया था इसने, तो अब तो बहुत जबरदस्त आया है तो इसने और खराब करेगा। ओवरऑल इस हिसाब से खाद्यान्न न्यूट्रिशन पौष्टिक आहार में जरूर जरूर इसमें खराब करेगा।
महामारी ने महिलाओं को भी विशेष रूप से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्या आपको लगता है कि कोविड 19 ने पहले से मौजूद लैंगिक असमानताओं को और बढ़ा दिया है?
जब कोविड फर्स्ट वेव आया, हमने ऐसा स्टडी किया तो हमने देखा वो स्टडी में कि जब परिवार में खाना खाते हैं तो पहले बच्चों खाते हैं, इसके बाद पुरुष खाते हैं, महिला बाद में खाते हैं। ये दुख है कि औरत लोग को कम मिलता है, बट ये भी हम लोगों को पता है कि जब औरत जो बच्चा पाने वाली है और बच्चा को खुलाने वाली है तो उनको पोषक ज्यादा चाहिए और बच्चों को भी पोषक ज्यादा चाहिए। तो जब ज्यादा जरूरत होता है यहाँ कम मिल रहा है, तो असर तो बिल्कुल पड़ेगा।
WFP तो देश के दूर दराज के इलाकों में काम करता है, समाज के कौन से दूसरे वर्ग हैं जो खास तौर पर खाद्य असुरक्षा की चपेट में आए हैं?
ये असर हर लोगों को पड़ रहा है, कोई भी वेज अर्नर हो उसको असर बहुत पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग के पास ज्यादा पैसा हो और अमीर हो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आदमी महीनावारी तलब खाके गुजराना चाहता उनके भी लिए भी असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको महीनों महीनों काम नहीं मिल रहा तो कैसे कमाएं, कैसे खाएं, घर के भाड़ा देने है, किराना देनी है तो किराया देनी है। बहुत लोगों ने ये पैसा बोरो कर रहे हैं।
तो ये जो कोविड 19 के कारण देश में नए हालात पैदा हो गए हैं, ऐसे में खाद्य सुरक्षा हासिल करने के रास्ते में क्या चुनौतियां आएंगी आपके हिसाब से?
चैलेंज बहुत हो रहा है। ओडिशा में मैं ट्रिप में गया था तो लोगों से मैंने पूछा आपको ये प्रोग्राम से क्या फायदा हुआ है। उन्होंने बोला जो प्रोग्राम नहीं होते तो लोग भुखमरी होते हैं, लेकिन ये भुखमरी से बचने से ये प्रोग्राम ने मदद कर रही है। लेकिन ये नहीं, ये मुसीबत तो लोगों में है क्योंकि अभी इस टाइम में पल्स नहीं दिया जा रहा है, तो वो खाना के लिए डाइवर्सिफाइड नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास कैश भी कम है, तो फ्रूट्स वेजिटेबल जो होता है, दूध और अंडे बच्चों के लिए, ये नहीं मिल रहा।
तो कोविड 19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर भारत में WFP ने कुपोषण और भुखमरी पर अपने कार्य में किस तरह के बदलाव किए हैं? खासतौर पर विश्व खाद्य कार्यक्रम कोविड 19 की दूसरी लहर के असर से निपटने में सरकार को किस तरह सहयोग दे रहा है?
अभी ये दूसरा कोविड आए हैं, इसके रेस्पॉन्स के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस प्रोग्राम से करीबन 2.5 और 3 लाख औरत बच्चों और आदमियों को मदद मिलेगा, पौष्टिक आहार मिले बच्चों और औरत को, और साथ साथ किचन गार्डन का भी प्रमोट करें। और दूसरी बात, माइग्रेंट लेबरर हैं जिनको कुछ मदद नहीं मिल रहा, जो छूट रहे हैं ये प्रोग्राम से, उनको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट साथ ही मिलके उनको भी मदद करें।
भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्टर विशोय पाराजुली।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आए हम तेरे द्वार, आए हैं लेने हम तेरा प्यार, बरसा दो आशीष हम पर, बना लो हमें अपना बना कर। आए हम तेरे द्वार, आए हैं लेने हम तेरा प्यार, बरसा दो आशीष हम पर, बना लो हमें अपना बना कर। प्यार से तूने हमें बुलाया, दास हमें अपना बनाया, पापी है तू क्षमा करना, तेरे आशीष से भरना। प्यार से तूने हमें बुलाया।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने लातिनी अमरीकी येसु धर्म समाजी स्कूलों के संघ की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वीडियो संदेश भेजकर कहा है कि स्कूलों का काम उदारता, समानता और एकात्मता हेतु अंतःकरणों का निर्माण होना चाहिए। गुरुवार को लातिनी अमरीका के स्कूलों को प्रेषित संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने आदर्श स्कूलों को परिभाषित करते हुए कहा कि स्कूलों को स्वागत के उत्तम स्थल बनना चाहिए, जहां बच्चों और युवाओं को समय के चिन्ह पहचानना सिखाया जाए। वे चाहते हैं कि स्कूली शिक्षा, विशेष रूप से छात्रों में उपभोग के कुछेक मॉडलों के प्रति आलोचनात्मक रवैया विकसित करने में मदद प्रदान करें, जो लोगों के बीच शर्मनाक असमानताएं पैदा करते हैं। लातिनी अमरीका का येसु धर्म समाजी स्कूल संघ इस समय करीबियाई देशों बोगोटा तथा कोलंबिया सहित लातिनी अमरीका के 19 देशों में 92 येसु धर्म समाजी स्कूलों को संचालित कर रहा है। संदेश में संत पापा ने स्कूलों के संचालकों, अध्यापकों और छात्रों का आह्वान किया कि वे येसु के पद चिन्हों पर चल अन्यों की भलाई के प्रति समर्पित रहें। हाशिए पर जीवन यापन करने वाले कथित निम्न और निर्धन तथा समाज में परित्यक्त लोगों के प्रति उदार बने तथा उनके एकीकरण का हर संभव प्रयास करें। संत पापा ने कहा कि स्कूलों के दरवाजों को सभी के लिए खुले रहना चाहिए, जहां निर्धन से निर्धनतम भी प्रवेश करने में भय न खाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों को सुसमाचार के ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, जो हमें प्राप्त एक विशेष अधिकार है। इसमें वह प्रज्ञा निहित है जो मनुष्यों को सब कुछ सिखा सकती है। संत पापा ने कहा कि स्कूलों को स्वार्थी अभिजात्य में अपने आप को संकुचित होकर नहीं रहना चाहिए, अपितु ऐसे स्थल होना चाहिए जहां छात्र सबके साथ मिलकर रहें, जहां भाईचारा और आपसी सम्मान का माहौल हो। इस संदर्भ में संत पापा ने स्मरण दिलाया कि भाईचारा सबसे पहले एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह मानव जाति और सारी सृष्टि की वस्तुनिष्ठ पहचान है, जिसके द्वारा हम एक परिवार में भाइयों और बहनों के रूप में बनाए गए हैं। जर्मनी में म्यूनिक फ्राइजिंग के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल राइनार्ड मार्क्स ने संत पापा फ्रांसिस द्वारा उनके इस्तीफे के इनकार के बाद 10 जून को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संत पापा से कहा है कि सरलतापूर्वक अपनी दिनचर्या पर वापस लौट जाना न तो मेरे लिए और न ही महाधर्म प्रांत के लिए हितकर होगा। गौरतलब है कि म्यूनिक फ्राइजिंग महाधर्म प्रांत में अतीत के कुछ एक पुरोहितों पर लगे यौन दुराचार के बाद कार्डिनल मार्क्स ने विगत 21 मई को संत पापा फ्रांसिस के समक्ष अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया था, जिसका बहिष्कार कर संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल से पुनः अपने काम पर लौटने का आग्रह किया था। संत पापा का कहना था कि मुश्किलों के आगे किसी को भी झुकना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का सामना करना चाहिए। संत पापा फ्रांसिस के पत्र के जवाब में कार्डिनल मार्क्स ने यह विज्ञप्ति 10 जून को जारी की। इसमें कार्डिनल लिखते हैं, संत पापा फ्रांसिस के तात्कालिक उत्तर ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। मैं इतनी जल्दी संत पापा के उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा था और न ही इस फैसले की कि मुझे महाधर्म प्रांत के कार्यभार को अभी भी जारी रखना होगा। संत पापा के भाई सुलभ और विस्तृत उत्तर ने मेरा हृदय स्पर्श किया है, इसलिए आज्ञाकारिता के भाव में मैं उनका निर्णय स्वीकार करता हूं, जैसा कि मैंने उनसे प्रतिज्ञा की थी। हालांकि उन्होंने लिखा, मेरे लिए तथा म्यूनिक फ्राइजिंग महाधर्म प्रांत के लिए इसका अर्थ है कि हमें एक साथ मिलकर चिंतन करना होगा तथा विफलताओं के संदर्भ में सुसमाचार का साक्ष प्रदान करने हेतु नए रास्तों की तलाश करनी होगी। उन्होंने कहा, धर्माध्यक्ष का कार्य धर्म प्रांत के लोगों के साथ मिलकर कलीसियाई समुदाय के नवीनीकरण का प्रयास होता है, जिसके लिए मैं कृत संकल्प हूँ। तथापि उन्होंने लिखा कि यह उपयुक्त ही है कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लूं तथा पीड़ितों की देखभाल और उनके पुनर्वास का पूरा ध्यान रखूं। विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के उदारता संगठन कारितास इंटरनेशनलिस ने भारत के कोविड पीड़ितों के लिए सहायता की अपील की है। भारत में कोविड-19 महामारी का संक्रमण रुक नहीं रहा है, जिससे अब तक 2,90,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 3,60,000 लोग मर चुके हैं। इसी की पृष्ठभूमि में कैथलिक कलीसिया के उदारता संगठन कारितास ने सहायता की अपील की है। कारितास संगठन के महासचिव अलोयशिस जॉन ने कहा कि कारितास भारत में इस समय अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से प्राथमिक उपचार प्रदान करने के अलावा लोगों को भोजन, मास्क, साफ सफाई के साधन उपलब्ध करा रहा है और साथ ही कोविड पीड़ितों के उपचार में संलग्न चिकित्सकों की मदद कर रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्थिति अत्यधिक गंभीर है तथा उन्हें नहीं पता कि कब तक वे लोगों की मदद कर सकेंगे। श्री जॉन ने कहा कि कारितास की भारतीय शाखा ने देश में कोविड पीड़ितों की मानवता सहायता के लिए तत्काल उपाय किए हैं तथा कोविड रोगियों के प्राथमिक उपचार के लिए कम से कम 28 चिकित्सीय केंद्र और द्वितीय स्तर के उपचार के लिए 58 केंद्र स्थापित किए हैं, जहां कारितास के चिकित्सकों ने 2,384 कोविड रोगियों का उपचार किया है। साथ ही 35,000 भोजन के और 22,000 चिकित्सीय उपकरणों और दवाओं के पैकेट्स लोगों में वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि कारितास कठिनाइयों में पड़े सभी लोगों की मदद को वचनबद्ध है, इसलिए कोविड महामारी से संघर्ष करने वालों के लिए संगठन विश्व के सभी शुभचिंतकों से अपील करता है। वैटिकन बैंक IOR ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। विगत 9 वर्षों से IOR अपनी वार्षिक रिपोर्टों को लगातार प्रकाशित करता रहा है। इस संदर्भ में प्रकाशित IOR की विज्ञप्ति में बताया गया कि 27 अप्रैल को संस्थान के अधीक्षण मंडल ने सर्वसम्मति से 2020 के वित्तीय वितरण को मंजूरी दी तथा विधियों के अनुसार इसे वित्त कार्यालय की देखरेख हेतु नियुक्त कार्डिनल आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। विज्ञप्ति में कहा गया कि संत पापा द्वारा दिए गए संकेतों के अनुकूल कार्डिनल आयोग ने लाभ के 75% को संत पापा फ्रांसिस के अधीन विशिष्ट संस्थाओं को दान करने का निर्णय लिया तथा शेष 25% को संस्थान के चल रहे विकास और इसके दीर्घकालिक मिशन के अनुरूप IOR की इक्विटी बढ़ाने के लिए आवंटित किया। विज्ञप्ति में कहा गया कि हालांकि 2020 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष था, तथापि संस्थान ने वैटिकन राज्य तथा समस्त विश्व में फैली कैथलिक संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करना जारी रखा। इस बात को रेखांकित किया गया कि IOR संस्थान ने अपने सभी कार्यों का संचालन कैथलिक कलीसिया की सामाजिक शिक्षा के अनुकूल किया। यह भी बताया गया कि इस वर्ष के दौरान IOR ने अपनी वरिष्ठ प्रबंधन टीम को मजबूत करना जारी रखा है और डिजिटल विकास हेतु निवेश में वृद्धि की है, जिसमें IT बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और साथ ही IT जोखिम और साइबर सुरक्षा के लिए एक व्यापक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।